آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
پیش ہیں آج کے مکھیہ سماچار وشالی جین کے ساتھ۔ نیو ساؤتھ ویلز میں کھلا پہلا ساموہک ٹیکہ کرن کیندر۔ بھارت میں کیندر نے اپنی ٹیکہ کرن نیتی کا کیا سپریم کورٹ میں بچاؤ، اور آسٹریلیا کی سیم کر نے انگلش پریمیئر لیگ میں جیتا گولڈن بوٹ۔ اور اب خبریں وستار سے۔ سڈنی کا پہلا ساموہک ٹیکہ کرن کیندر ہومبش کے اولمپک پارک میں کھولا گیا ہے۔ یہ ٹیکہ کرن کیندر ایک ہفتے میں 38,000 ٹیکے بانٹنے کی کشمتا رکھتا ہے، اور یہ ہفتے میں 6 دن کام کرے گا۔ کھلنے کے پہلے پکھواڑے میں کیول وے لوگ جو چرن 1E اور 1B کے لیے یوگی ہیں اس کیندر پر ٹیکہ پراپت کر سکتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز کی پریمیئر گلاڈس برجکلین نے کہا کہ 50 سے ادھک کی عمر کے لوگ اس کیندر پر 24 مئی سے ٹیکہ پا سکیں گے۔
If you're over 50, please contact your GP, because from next Monday you'll be able to get your AstraZeneca vaccine if you're over 50. And then from the New South Wales hub, you'll be able to get it from the 24th of May. But you can register from this Wednesday. If you don't have a GP or don't have access to a GP or you find it difficult getting to a GP, you can book with us from the 12th of May, this Wednesday, and get your jab from the 24th of May. So you'll be told when it's your turn and you'll be able to come and get the jab.
40 से 50 की उम्र के बीच के व्यक्ति जो फाइजा के टीके के लिए योग्य हैं आज शाम 5 बजे से nsw.gov.au वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह केंद्र तब खुला है जब सिडनी में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंध एक हफ्ते और के लिए बढ़ा दिए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स में आज कोई नया स्थानीय कोविड मामला दर्ज नहीं हुआ है। पर्यटन उद्योग ने फेडरल सरकार से इल्तिजा की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलने की समय अवधि निर्धारित कर दें। इस साल के फेडरल बजट के आंकड़े इस धारणा पर लगाए गए हैं कि देश के बॉर्डर 2022 में खुलेंगे, पर सरकार का कहना है कि विदेश यात्री तभी देश में प्रवेश कर सकेंगे जब मेडिकल विशेषज्ञ इसकी अनुमति देंगे। विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि यह प्रक्रिया और भी जल्दी पूरी की जा सकती थी अगर सरकार ने स्थिति को ठीक से संभाला होता।
They have had a year to prepare in terms of quarantine and vaccinations, and they've bungled both. Whilst the quarantine system remains reliant upon hotels in the middle of CBDs, and whilst people aren't vaccinated, then there will continue to need to be restrictions on our economic activity. This is an absolute failure.
स्वास्थ्य यूनियन के सदस्य और कर्मचारियों ने सरकार से फेडरल बजट में एज्ड केयर की दिशा में फंडिंग की मांग की है। वित्त मंत्री साइमन बर्मिंगम ने कहा है कि इस साल के बजट में एज्ड केयर के लिए भारी फंडिंग दी तो जाएगी, पर उन्होंने साथ यह भी माना कि यह फंडिंग इस क्षेत्र की सभी मुश्किलों को हल करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। सरकार ने एज्ड केयर के लिए आने वाले 4 सालों में बजट के जरिए 10 बिलियन से अधिक की अतिरिक्त फंडिंग का प्रावधान किया है। रॉयल ऑस्ट्रेलेशियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने कहा कि यह किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लगातार होने वाली सरकारी कटौतियों के बाद एज केयर सेक्टर में हर साल $10 बिलियन की कमी महसूस की जाती है। वित्त मंत्री साइमन बर्मिंगम ने स्काई न्यूज से कहा कि हर क्षेत्र की सारी समस्याएं एक साथ नहीं सुलझाई जा सकती।
It won't magically solve every challenge the aged care sector faces overnight, but it does comprehensively respond to the issues raised in the Royal Commission. Now remember, the Royal Commissioners themselves had some divided points of opinion in their recommendations. We've worked through all of that, and people will see that it deals with safety, it deals with quality, it deals with care that people individually receive and making sure they get it.
लेबर के कोष प्रवक्ता जिम चार्मर्स का कहना है कि सरकार यदि सचमुच फिक्रमंद होती तो उसने पहले ही समाधान के लिए ठोस कदम उठा लिए होते।
This government is 8 years old. By the time of the next election, they'll be asking for 12 years. They seem to want a round of applause for talking about some of these issues which are messes of their own making. We will be ready for an election whenever it is, but this looks like and smells like and sounds like a budget designed to get a government through an election and not to get people into good, secure, well-paid jobs.
इस साल के फेडरल बजट में करीब $5 बिलियन ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए रखे जाएंगे जो सड़कों को सुरक्षित बनाने, यात्रा समय घटाने और हजारों नौकरियां पैदा करने की ओर लक्षित होंगे। उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉमक का कहना है कि ये फंडिंग सरकार की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
We need this budget to continue, as it will do. To invest in jobs, as we have done since 2013. What we've done as part of the budget infrastructure rollout is we've looked at and addressed state priorities. We've looked at community needs and expectations. Australians deserve the best infrastructure that they can get, and that's what we're doing. And so we'll work collaboratively and cooperatively, as I've done the whole way through.
क्वींसलैंड के कोषाध्यक्ष कैमरन डिक ने कहा है कि उनके राज्य को जानबूझकर साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे छोटे राज्यों के हक में कम फंडिंग दी जा रही है। बताते चलें कि साउथ ऑस्ट्रेलिया को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए $2.6 बिलियन और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया को $3-3 बिलियन राशि दी जा रही है। श्री डिक का कहना है कि इस आवंटन को समझना मुश्किल है क्योंकि क्वींसलैंड की 5.1 मिलियन की आबादी साउथ ऑस्ट्रेलिया की 1.77 मिलियन की आबादी से दोगुनी से भी ज्यादा है। फेडरल सरकार कनाडा के रिफ्यूजी प्रोग्राम की सामुदायिक प्रायोजन के मॉडल की तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया में भी रिफ्यूजी व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत निजी और सामुदायिक ग्रुप मानवीय आधार पर देश में आने वाले रिफ्यूजियों को बसने में आर्थिक और सामाजिक सहायता देंगे। कनाडा ने इस मॉडल के तहत 1970 से अब तक 300,000 शरणार्थियों को अपने देश में बसाया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड स्थित ड्यूनेडिन में चाकू चलने की वारदात में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सुपरमार्केट कट डाउन की एक प्रवक्ता ने बताया कि घायल होने वाले 5 लोगों में से 2 वहां के कर्मचारी हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि वारदात के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। और अब खबरें भारत से। भारतीय केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वैक्सीनेशन के अलावा कोविड प्रबंधन की ताज़ा और विस्तृत जानकारी दी है। सोमवार सुबह होने वाली सुनवाई से पहले रविवार शाम 218 पन्नों के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सभी सवालों के बिंदुवार जवाब दिए हैं। केंद्र ने अपनी टीकाकरण नीति का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने कहा है कि देश भर में कोई भी कोविड मरीज कहीं भी अस्पताल में दाखिल हो सकता है, यानी RT-PCR रिपोर्ट या राज्य शहर में रहने के आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि कोविड सेंटर, बिस्तर, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई गई है। कोरोना वैक्सीन और उससे जुड़ी दवाओं पर टैक्स को लेकर हो रही आलोचनाओं का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड वैक्सीन पर न्यूनतम 5% और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर व कोविड की दवाओं पर 12% टैक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इनकी कीमत को कम करने में मदद मिलती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भारत में कोरोना संकट के बीच इन दवाओं और वस्तुओं पर टैक्स माफ़ करने की मांग के बीच उनका यह बयान आया है। भारत में कोरोना के ताज़ा मामलों में सोमवार को मामूली राहत दर्ज की गई। देश में पिछले कई दिनों से लगातार 400,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को यह संख्या 366,000 के आसपास रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 366,161 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की तादाद 2,26,62,575 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 353,818 है। अब तक कुल 1,86,71,222 लोग इस वायरस के प्रकोप से मुक्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 3,754 रही है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.53 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल खिलाड़ी सैम कर ने ना ही केवल गोल्डन बूट जीता बल्कि अपने गोल से रीडिंग पर 5-0 से चेल्सी को विजय भी प्राप्त करवाई। यह सुश्री केर का इस स्पर्धा में 21वां गोल था। सुश्री केर का पिछले 5 सालों में यह 6वां गोल्डन बूट अवार्ड है जो उन्होंने 3 अलग-अलग देशों में जीता। सुश्री केर का कहना है कि वे बेहद खुश हैं।
Yeah, coming over from America, not gonna lie, this feels pretty good. Yeah, it is special. I think it was always a dream of mine to come play in Europe and to continue to score and be a part of this amazing team. This is my job to help us win titles, so I'm pumped.
और अब डालते हैं अंत में नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप रहने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 27 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 16 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल हल्की बूंदाबांदी की आशंका है। यहाँ अधिकतम तापमान 15 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बारिश की आशंका है। यहाँ का अधिकतम तापमान 15 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल पानी बरसने की पूरी संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में आंधी के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में कल हल्की उमस के साथ धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप छांव का मौसम रह सकता है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।